कहना है रहना है, घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है लड़ना है, सब जनला मिलके लड़ना है।
यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी।
जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम करने को कायाकल्प।
जन जन के साथ है ता फिर आए खुशहाली।
स्वास्थ्य संकल्प,
भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।
यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से अरपार रेडियो द्वारा प्रसारित स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। बरसात का वक्त, ऊपर से बरसता पानी और नीचे पीने के पानी से हो सकती है बीमारी, ये बात सबने है मानी कि रखें सावधानी। जल है तो जीवन है, प्रदूषित जल है तो जीवन रोगों का घर है। पानी बचाना भी जरूरी है और प्रदूषण से बचाना भी।
दुनिया भर में इस समय करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और साफ पेयजल उपलब्ध ना होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर असमय काल का ग्रास बन जाते हैं।
ये जल ये ना हो जाए ओझल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से मात्र 3% पानी ही स्वच्छ बचा है, और उसमें से भी करीब 2% पानी पहाड़ों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, जबकि शेष 1% पानी का उपयोग ही पेयजल, सिंचाई, कृषि तथा उद्योगों के लिए किया जाता है।
ये जल ये ना हो जाए ओझल।
अपने भूगोल को इतिहास बनते नहीं देखना है तो पानी की एक एक बूंद को बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है।
शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल।
जल तो हमारा कल है ही, लेकिन आज के बच्चे कल का भविष्य कितना जानते हैं जल और जलजनित रोगों के बारे में, आइए सुने।
क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम खुशलीन कौर गांधी है।
कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
मैं कक्षा 3A की छात्रा हूँ।
खुशलीन, अभी बरसात हो रही है, बाहर बरसात में खेलने में मजा आता है?
हाँ, मुझे तो बहुत आता है।
खेलने को मिलता है कि नहीं मिलता है?
नहीं मिलता, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं।
सिर्फ कपड़े गंदे हो जाते हैं इसलिए खेलने नहीं मिलता तुमको?
और वहाँ पर बहुत बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे जर्म्स होते हैं, इसलिए नहीं मिलता।
तो तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि मैं चुपके से छिप करके जाऊँ और दौड़ करके पानी में भीग करके आऊँ, छप 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 करूँ?
मैं करती हूँ, जब मैं अपने ट्यूशन से आती हूँ और बहुत सारे मड होते हैं, कीचड़ होते हैं, उसके ऊपर मैं जंप, मतलब साइकिल रोड खाली होती है फिर भी मैं जान मुझ के उसी में से जाती हूँ, बस उसमें ही मेरे को अलाउड है।
अच्छा, तो जितना तुमको अलाउड होता है तुम उतना ही काम करती हो, मम्मी पापा की सब बात मानती हो?
नहीं, बच्चे इतना भी सब चीज़ मानते नहीं है, बच्चे तो आधे से ज़्यादा शरारती होते हैं।
तो तुम भी शरारती हो इसका मतलब ना?
Obviously.
तो खुशलीन, ये बताओ कि जो हम पानी की बात कर रहे हैं, बरसात में पानी है, तुमने कहा जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर वैसा पानी हम पिएंगे तो क्या होगा?
पिएंगे तो हमें बीमारियां हो सकती हैं।
तुमको मालूम है पानी के पोल्यूशन के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
जॉइंटिस होता है, कॉलरा होता है।
बिल्कुल सही बात, जिसको हम हैजा बोलते हैं कॉलरा को, और जॉइंटिस को हम पीलिया बोलते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द ऐठन होती है, टाइफाइड है, पेचिस है, और डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सब पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं।
उससे बचने के लिए हमको कैसा पानी पीना चाहिए? पानी तो बहुत तरह का होता है, समुद्र का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी, घर में नल से जो आता है वो पानी, तो कैसा पानी पीना चाहिए?
हमें फिल्टर का पानी पीना चाहिए।
तो जिसके घर में फिल्टर है, आरओ है, एक्वागार्ड है, वो लोग तो ठीक है, बाकी लोग
बाहर बोरो का पानी पिए।
अच्छा, पर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम पानी को उबाल कर पिए?
हाँ, उबाल कर पीने से तो जर्म्स मर जाएंगे।
हाँ, तो ये वाली बात सारे अपने साथियों को और परिचितों को तुम जरूर बताना कि अगर फिल्टर्ड पानी नहीं पी रहे हैं और बरसात में बहुत पोल्यूटेड पानी है तो हमको पानी को उबाल कर पीना चाहिए, उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए।
ठीक है, मैं अपने सारे मित्रों से ये बात शेयर करूंगी।
अच्छा खुशलीन, एक बात और शेयर करना, अपने फ्रेंड से नहीं अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से। तुमको मालूम है सब लोगों ने, वो कोरोना आया था जिसके कारण पिछले 2 साल से हम सब बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए एक वैक्सीनेशन वाला अभियान चला था। हाँ। है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा ने सबने घर वालों ने वैक्सीन लगवा ली थी।
मेरी दादी के तो सेकंड डोज चल रहा है।
तो सेकंड डोज के बाद एक बूस्टर डोज और आई है ना, मालूम है?
नहीं मुझे नहीं मालूम।
जिसके भी सेकंड डोज के बाद 6 महीने हो गए हैं उन लोगों को अब एक बूस्टर डोज और लगवानी है।
ठीक है, मैं अपने घर वालों से और अपने घर के पास रहने वालों से ये बात जरूर शेयर करूंगी।
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना ना फिर से आने वाला है, बढ़ने लगा है, ऐसा सब तरफ सुनने में आ रहा है, तो उसके लिए बड़े लोग सेफ तभी रहेंगे जब वो बूस्टर डोज लगवाएंगे।
ओके, अगर सब बड़े अंकल आंटी दादा दादी लोग ये बूस्टर डोज लगवाएंगे तो कोरोना को हरा देंगे।
हाँ बिल्कुल।
कंप्लीट सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी लेनी है जरूरी, कोविड से तभी होगी सुरक्षा पूरी।
नन्हे बच्चों को कम ना आकिए, ये समझदार भी हैं और जानकार भी, लेकिन देश के नन्हे बच्चों का विकास अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है इनको सही आहार मिले। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों का संपूर्ण आहार है माँ का दूध, जो 6 महीने के बच्चे तक का हक है। और इसके बाद क्या पोषण, कितना आहार, कौन सा खाना, किस उम्र के बच्चों में कितना कितना खाना, आज के इस कार्यक्रम में सुनिए एक बातचीत, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। मीनू सिंह बातचीत कर रही हैं डॉक्टर रेणु वर्मा से।
आज हमारे साथ हैं MLB कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर रेणु वर्मा। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों के पोषण की तरफ हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों है?
देखिए, पोषण का सीधा संबंध होता है स्वास्थ्य से, और स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये तीनों प्रकार से जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी हम उसे स्वस्थ मानते हैं। तो बचपन में इन तीनों में बाढ़ और वृद्धि होती रहती है, तो इसके लिए बहुत सारे पोषक तत्व जरूरी होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि बाढ़ और वृद्धि की स्टेज होती है। और इस स्टेज में जब पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और पोषक तत्वों की कमी से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे एनीमिया हो जाता है, बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं, कम वजन के रह जाते हैं, या अति पोषण के शिकार होते हैं जैसे ओबेसिटी, या कई बार उनमें मानसिक विकृतता भी देखी जाती है। तो इसलिए पोषण की आवश्यकता बच्चे में हर स्टेज में होती है।
अच्छा, छोटे बच्चों की अगर बात करें तो एक आम धारणा है कि हमारे देश भारत में 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं, 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो कम कुपोषित होते हैं, और उसके बाद बच्चों में कुपोषण ज्यादा देखने को आता है, इसके क्या कारण होते हैं?
देखिए मीनू जी, दरअसल जब बच्चा 6 माह तक तो मदर सीट पे रहता है, और ये हम सभी जानते हैं कि मदर्स मिल्क जो होता है ये बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, मतलब उसे ऊपर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। और इसका कंपोजिशन या संगठन, मदर्स मिल्क का संगठन बच्चे की उम्र के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है, मतलब उसकी जैसी जैसी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वैसे ही वो अपना कंपोजिशन बदल लेता है। तो 6 महीने तक बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब हम उसे ऊपरी आहार देना प्रारंभ करते हैं, और यहाँ पे हमारी चूक कुपोषण के रूप में परिलक्षित हो जाती है। बच्चे के आहार को हमें न सिर्फ टेस्टी और अट्रैक्टिव बनाना होता है बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। उसे हम खिचड़ी खिलाएं, दलिया खिलाएं, पुडिंग, सूप, जूस, जो भी चीज उसे दें उसमें फल और सब्जियों का भरपूर प्रयोग किया जाए और दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खीर है, सेवई है, दही, पनीर, लस्सी, इनका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इन सभी चीजों के साथ दूध का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। दूध को बंद नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि ऊपरी खाना खिलाने के चक्कर में हम उनका दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम करना तो जरूरी होता है क्योंकि बच्चा ऊपरी आहार लेगा, लेकिन फिर भी दूध का अंडे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसको बराबरी से साथ साथ देते रहना चाहिए।
बचपन के कुपोषण का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
दरअसल जब कुपोषण काफी लंबे समय तक चलता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे समय के लिए अगर कुपोषण हुआ या पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उसको बॉडी रिकवर कर लेती है, लेकिन जब लंबे समय तक कुपोषण चलता है, बच्चा बार बार बीमार होता है, बार बार कुपोषित होता है, हम उसको खाना नहीं खिला पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके इंटरनल ऑर्गन्स वीक होते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है और बार बार संक्रमण से वो और कमजोर होता चला जाता है और एक ये एक विशेष साइकिल के रूप में उभर के आती है, यानी एक कुपोषण का हम कह लें कुचक्र चलता है कि एक कुपोषित बच्चा या बच्ची कुपोषित ही युवा होती है और कुपोषित ही माता या पिता बनती है और उससे जन्म लेने वाले बच्चे भी कुपोषित होते, तो ये एक विशेष साइकिल होती है, एक कुचक्र होता है, इस कुचक्र से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों में जो कुपोषण होता है, यदि बच्चे को उस विशेष साइकिल से हम बाहर नहीं निकालते हैं तो निश्चित रूप से उसके भविष्य पे उसका प्रभाव पड़ता है।
जी आपने ये बताया, लेकिन अलग अलग उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सामान्य जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगे फल नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को कौन सी ऐसी घर में उपस्थित चीजें देकर स्वस्थ और अच्छा पोषण दे सकते हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
देखिए, उनको जो चीजें देना चाहिए वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बच्चों के आहार में विशेषकर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि बच्चों का भोजन अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, मतलब उसमें रंगों का समावेश हो, रंगीन पदार्थ देखकर बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको बहुत शौक से खाते हैं। दूसरी चीज, फूड जो भी बनाए उसको पहले खुद टेस्ट कर ले, वो टेस्टी होना चाहिए। मदर्स जनरली ब्रुएल वगैरह बना के, दलिया वगैरह बना के सीधे बच्चे को खिलाना शुरू कर देती है, वो ये नहीं देखती, वो खुद अगर खाके देखे तो उन्हें पता लगता है कि वो खुद नहीं खा सकती और वो बच्चे से एक्सपेक्ट करती है कि वो खा ले। दूसरा, बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा नमकीन या खट्टा पदार्थ बच्चों को खाने में यूज ना करें, क्योंकि इससे बच्चों की टेस्ट बड बहुत सेंसिटिव होती है और बच्चा उससे घबरा के भागने लग जाता है। फिर किसी भी नए फूड का जब हम यूज करें तो उसे पहली बार जब हम खिलाते हैं तो उसे बहुत अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाकर उसके सामने हमें प्रेजेंट करना चाहिए। अगर बच्चे को उसका स्वाद जम जाता है तो हमें एक दिन के आड़ से उस फूड को लगातार 4-5 बार यूज करना चाहिए ताकि बच्चा उस फूड का आदी हो जाए। लेकिन यदि बच्चा उसे नहीं पसंद करता है तो उस फूड को हमें कुछ समय के लिए बिल्कुल हटा देना चाहिए, बच्चे के सामने नहीं लाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी कि जो बच्चों के खाने के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को हरी सब्जी, फल, सूखे मेवे, दूध, अंडा, पनीर हमें प्रचुर मात्रा में देना चाहिए और अगर हम जैसे बहुत महंगे भोज्य पदार्थ नहीं अवेल कर सकते हैं तो फली है, सोयाबीन है या विभिन्न प्रकार के बीज जो होते हैं, इन बीजों को इकट्ठा करके हम उससे भी न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं, जैसे मटर है, सोयाबीन है, चना है, मूंगफली है, इन सबको मिक्स करके, गुड़ को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन डब्बा बंद और प्रोसेस्ड फूड बच्चों के लिए यूज हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये प्रिजर्वेटिव बच्चे के एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं या हम कहें हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से प्लास्टिक के प्लेट, कप, ग्लास, टिफिन, बॉटल्स का प्रयोग भी बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बिस्फिनॉल जैसे जो तत्व होते हैं ये उनके हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अच्छा, तो इसके अलावा एक बात और मुझे पूछनी है कि मोटापा भी बच्चों में जो बढ़ रहा है वो भी एक कुपोषण का रूप है, तो इससे भी क्या क्या नुकसान होते हैं आगे जाके बच्चों को, उसके बारे में भी बताइए।
जी हाँ, मोटापा भी कुपोषण का ही एक रूप है। ये अति पोषण कहलाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा पोषण भी का भी दुष्परिणाम होता है। और मोटापे को मदर ऑफ डिजीजेस कहा जाता है, क्योंकि मोटापा अकेला साथ नहीं आता, बहुत सी बीमारियां साथ लेके आता है। मोटापे से कम उम्र में ही बच्चों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी डिजीजेस, एनीमिया जैसी बीमारियां देखी जाती हैं, और इससे बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये भी कम होती जा रही है। जो मोटे बच्चे होते हैं खासकर, इनमें डायबिटीज के केसेस कम उम्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत सरलता के साथ आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर रेणु वर्मा ने जो जानकारी उपलब्ध करवाई आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसका फायदा आपको अपने बच्चों का उचित पोषण आहार देने में जरूर काम आएगा। और अब कार्यक्रम में एक बार फिर आ गया है कोरोना वायरस। जी हाँ, हमारे प्रतिनिधि अरुण भांगे जो कोरोना वायरस बनकर लोगों को फोन करते हैं, चलिए सुने आज इनकी कॉल कहाँ पहुंची है।
कोरोना कॉलिंग।
हेलो,
हाँ कौन?
मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। नमस्ते।
नमस्ते सर, कौन बोल रहा है?
मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ, बताया मैंने।
अच्छा, तो नमस्ते, मैं हैंड सैनिटाइजर बोल रही हूँ।
अरे वाह, मैं तो आप,
अरे कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल नहीं आते तो बोल कौन रहा है बताएंगे।
मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ।
क्या मजाक चल रहा है?
नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सीरियस मैटर है।
मैटर सीरियस है पर आप बोल कौन रहे हैं? मतलब
पूरी दुनिया जान गई, आप नहीं जानती मुझे।
मतलब मैं कोरोना वायरस से मैं पर्सनली तो कभी भी नहीं मिली हूँ, और ना ही उसका नंबर है मेरे पास, ना मेरा नंबर उसके पास है, तो आपको मेरा नंबर कैसे मिला?
आपका नंबर तो मेरे पास है ना, मेरा नंबर आपके पास भले नहीं होगा, और आप भले कभी मिली नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप मिले भी नहीं, और मैं भी आपसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए आपको कॉल किया।
मतलब
मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मैं आपके पास आ जाऊं?
अरे आप बोल कौन रहे हैं भाई, प्लीज बताएंगे आप?
मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूं।
देखिए आप नौटंकी मत कीजिए, जो भी है आप अपना नाम बताइए, कौन है? मतलब इतना फालतू टाइम है आपके पास कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है, मैं तो बस आपसे नहीं मिलना चाहता ना, इसलिए मैंने कॉल किया आपको।
आप कोरोना वायरस है तो मैं हैंड सैनिटाइजर बन जाती हूँ, तो ही ज्यादा बेटर है।
जी बिल्कुल, फिर तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा।
हाँ, धो पोछ के आपको पूरा मिटा दूंगी मैं तो।
जी मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ और मैं आपके पास नहीं आना चाहता।
मत आइए आप, बाहर में जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहे हैं, मुझे बताइए आप।
तो मैं बाहर में जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना।
देखिए मेरे पास ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात करूँ, अगर आप बता रहे हैं कि आप कौन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं फोन काटती
हूँ। नहीं प्लीज, फोन मत काटिए, क्या फोन कट हो जाएगा ना तो फिर ना लोग जान नहीं पाएंगे कि मेरे से कैसे बचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अफवाह फैला रहे
हैं कि आपसे कैसे बचना है अगर आप कोरोना वायरस हो तो।
जी?
आप जैसे लोगों को ना, आप जैसे लोगों को, वही बात है, कोरोना वायरस के लिए भी हमको चेन ब्रेक करना है ना, वैसे आप लोगों को भी फोन कट करना पड़ेगा, तभी आप जैसे लोग भी सुधर सकते हैं।
जी बिल्कुल, मैं तो सुधरना चाहता हूँ, लोगों को भी सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया आपको।
देखिए मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, कौन बोल रहे हैं प्लीज जिद्दत से बता दीजिए मुझे।
जी मैं कोरोना वायरस ही बोल रहा हूँ, और लोग ना बहुत अफवाह फैला रहे हैं, और ना बातों को नहीं मान रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं।
अरे भाई, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो?
हाँ तो आप नहीं जा रहे हो ना, आप हाथ धो
रहे
हो ना?
आप जाओ उनके पास, जाओ उनके सामने आओ और बोलो, फोन पे ऐसे क्यों कोरोना वायरस बन बन के लोगों को परेशान कर रहे हो?
नहीं मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो बाद में, इसलिए मैंने कॉल कर रहा हूँ।
देखिए कोई मजाक है कि क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब हो क्या रहा है?
नहीं मजाक नहीं है, बस थोड़े से कुछ मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, आप उसी में अड़े हुए हैं कि बताओ कौन, बताओ कौन।
अच्छा चलिए बताइए, क्या मुद्दा आपका?
मुद्दा बस ये है कि आप मुझसे बचने के लिए, या मैं आपके पास ना हूँ उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
आप हमारे पास ना आए उसके लिए हम हैंड सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, बार बार हाथों को धो रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बच रहे हैं। अब उससे ज्यादा हम और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अब हमें नहीं पता था कि कोरोना वायरस फोन पर भी आ जाने वाला है, अगर हमको पता होता तो शायद यहाँ पे भी हम कुछ करते।
लेकिन इस फोन से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना, आप बीमार नहीं पड़ोगे ना।
नहीं, पर ऐसे कोरोना वायरस कॉल करता रहेगा तो शायद हम पड़ गए किसी दिन बीमार।
नहीं नहीं, ऐसे आपको बार बार कॉल नहीं करेंगे, मैं तो एक बार बस कॉल किया हूँ।
जैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला?
बस आपका नंबर मिल गया हमको, मैं तो कहीं पे भी चला जा रहा हूँ ना, तो आपका नंबर मिल गया मेरे को।
ठीक है, रहने दीजिए, हो गया आपका मुद्दा उद्दा जो भी था, मैं फोन कट करती हूँ, ज्यादा बेटर।
सुनिए 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 शिवांगी जी, हम ना अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से अरुण बोल रहे हैं और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की।
जी भैया,
थैंक यू सो मच।
ओके ओके।
कोरोना से बचाव है जरूरी, बूस्टर डोज भी अब लगवा ही लीजिए, वरना हमारे अरुण भांगे उर्फ कोरोना वायरस का फोन आपके पास भी पहुंच सकता है। और अब चलते हैं शांति और क्रांति यानी सास बहू के घर। आज इनके घर की समस्या क्या है जरा सुनिए। प्रहसन लेखिका सुमेधा अग्रश्री, प्रतिभागी अनीश श्रीवास, संज्ञा और सुमेधा।
इतनी तेज बारिश हो रही है, रानी साहिबा का अता पता नहीं है। एक तो वैसे ही मेरे को सर्दी खांसी हो रही है, 5 बजने को आए सब्जी लेने गई है, वहीं सब्जी बनाने बैठ गई लगता है। टुट्टू भी तो ऑफिस से देर से ही आता है, किसी को चिंता ही नहीं, सब कुछ मुझ बेचारी के भरोसे छोड़ दिया है। कहीं रुक गई है तो फोन तो करना चाहिए ना। नहीं, मम्मी को तो बड्डी समझती है सब, छोटे बच्चे की भी चिंता नहीं है।
अकेले क्या बड़बड़ कर रही है?
तू कब आ गई? स्कूटी की आवाज तो आई नहीं।
गाड़ी बंद पड़ गई, पैदल आ रही हूँ।
अरे तो कोई रिक्शा ऑटो ले लेती,
इतनी बारिश में कोई इस तरफ आने को तैयार ही नहीं था ना।
अरे तो कहीं रुक जाती, इतनी भी क्या हड़बड़ी मची थी।
अच्छा, अभी तो आप बड़बड़ा रही थी, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई।
हाँ तो ये थोड़ी कह रही थी कि इस तरह झोला घसीटते पानी में भीगते चली आओ, कहीं रुक जाती।
रुकी तो थी मम्मी जी, फिर जब बारिश बंद होने का कोई आसार नहीं दिखा तो पैदल ही चली आई।
बड़ी बहादुरी का काम किया, अरे फोन भी तो कर सकती थी।
फोन तो गड्ढे में गिर गया ना, पानी घुस गया, चालू ही नहीं हो रहा।
ये लो, अभी ये कैसे हो गया? स्कूटी चलाते हुए क्या फोन पर बात कर रही थी?
नहीं नहीं मम्मी जी, सब्जी बाजार में इतना कीचड़ था कि मैं फिसल गई, बस फोन हाथ से छूट कर गड्ढे में गिर गया।
अभी तो सब्जी लेते समय फोन हाथ में क्यों रखा था?
मैं सोनू के पापा को फोन लगाकर बता रही थी ना कि स्कूटी खराब हो गई।
तो उसने आके सुधार दिया?
हाँ, उनका ऑफिस इतनी दूर है, वो कैसे आ सकते हैं?
तुझे तो लगा होगा कि फोन लगा लूं और वो फोन पर घुसकर आए और स्कूटी ठीक करके चला जाए।
क्या मम्मी जी, मैं कीचड़ से सन गई हूँ, वो नहीं देख रही, बस बातें सुनाए जा रही हैं।
कीचड़ से सन गई है इसीलिए तो सुना रही हूँ, हर रोज रेडियो में पेपर में चेतावनी आ रही है कि मौसम में अपना ख्याल रखें, डेंगू पीलिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, और ये मैडम मड बात करके आई है।
मड बात
और क्या, अपना हुलिया तो देखो जरा, ऐसी हरकत तो सोनू भी नहीं करता है जैसी उसकी माँ आज करके आई है।
मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ।
हेलो हेलो बघेल भैया।
हेलो।
हाँ बघेल भैया, आपने कहा था ना कि इलाज से बेहतर है सावधानी।
हाँ माँ जी, आपने ये बताने के लिए मुझे फोन किया है?
अरे नहीं रे, सावधानी के लिए फोन किया है
जी।
आज क्रांति, अरे मेरी बहू सब्जी बाजार से गंदे कीचड़ में गिर के आई है, तो आप ही ने बताया था ना कि ये जगह बारिश के कीटाणुओं का सबसे फेवरेट घर है, तो मुझे लगता है अब क्रांति को एक ना एक बीमारी तो लगनी ही है।
आपकी चिंता तो ठीक है अम्मा जी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो जाए।
पर हो भी तो सकती है ना।
हाँ हो भी तो सकती है,
बस फिर आप दवा वगैरह लेकर आ जाइए।
अच्छा, उनके कोई लक्षण दिख रहे हैं क्या?
अब लक्षण तो मैं क्या बताऊं इसके।
अरे अम्मा जी, मैं बहू वाले उन लक्षणों की बात नहीं कर रहा हूँ।
फिर?
अरे भाई, बीमारी के कोई लक्षण दिख रहे हैं क्या? बुखार, सर्दी वगैरह?
ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा।
हाँ, तो बस फिर चिंता की बात नहीं है।
पर आपने कहा था कि कई बार लक्षण देर से दिखते हैं।
अच्छा अच्छा अम्मा जी, आप भाभी जी को ना एक काम करिए, अदरक और तुलसी की चाय पिलाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके लिए भी अच्छी सी चाय बना दूंगी। ठीक है
ठीक है ठीक।
किसके लिए चाय बना रही हैं?
तेरे लिए।
अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी ने नहा के परेशान किया आपको वकील भैया?
अरे कोई बात नहीं भाभी जी, अरे अम्मा जी के हाथ की मस्त चाय के लिए थोड़ी परेशानी तो मंजूर है मुझे।
नहा क्यों? सावधानी रखने में भलाई है।
जी वो तो सही है कहा अम्मा जी आपने। भाभी जी, आपको बुखार, बदन दर्द जैसी कोई समस्या तो नहीं है ना?
नहीं बघेल भैया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या सचमुच मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए?
अरे नहीं भाभी जी, दरअसल क्या है ना, बरसाती बीमारियों से बचने का ना सबसे अच्छा उपाय है साफ सफाई, और वो तो आप रख ही रही हैं।
ऐसे कोई बीमारी नहीं होगी?
आप क्या चाहते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो जाए?
अरे नहीं नहीं, अरे नहीं भाभी जी, अरे दरअसल वो आपकी बहुत परवाह करती है ना, इसलिए बार बार पूछ रही है।
हाँ वही तो।
भाभी आप रसोई में उबला या फिर फिल्टर का पानी इस्तेमाल करती है ना?
हाँ हाँ।
बाहर का कुछ भी ऐसा खाना उपयोग में नहीं करती जिसमें गंदा पानी मिलाए जाने की संभावना हो?
हाँ बिल्कुल।
अपने घर के आसपास बरसाती पानी इकट्ठा नहीं होने देती?
बिल्कुल हाँ हाँ।
और आप सोते समय मच्छरदानी इस्तेमाल करती हैं?
जी बिल्कुल हाँ भैया।
अरे तो फिर मजाल क्या है बरसाती बीमारी का कि वो आपकी तरफ देख भी सके?
सुना मम्मी जी, मुझे कोई बीमारी नहीं होने वाली।
तो ठीक है, इसी खुशी में तू अदरक वाली चाय बना, बघेल भैया को पिला।
हैं? पर वो तो आपके हाथ की चाय पीने आए हैं ना?
हाँ, पर लगता है मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। आज सुबह से मेरे हाथ पांव में जरा दर्द है।
हाथ पांव में दर्द?
हाँ थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी।
बुखार भी है क्या मम्मी जी?
हाँ हल्का सा बुखार सा लग तो रहा है।
अरे फिर तो अम्मा जी लगता है आपको कोई बीमारी लग गई है।
अरे कोई क्या, अब तो जांच से ही पता चलेगा, डेंगू मलेरिया पीलिया हैजा टाइफाइड।
अरे चुप कर, बीमारियां बढ़ाती चली जा रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रुक जा, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ।
बरसात के पानी से, पानी के ठहराव से, प्रदूषित पानी को पीने से बचें, रोगों को दूर रखें और संकल्प लें स्वस्थ रहने का। आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम से दीजिए अब हमको इजाजत। हम फिर आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए अगले हफ्ते। नमस्कार। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
जन जन के साथ है ता फिर आहे खुशहाली।
स्वास्थ्य संकल्प
भारत मुस्कुराए।